Well now, brethren, thank you for your cooperation when we took that photograph.
भाइयों, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं जब हम फोटोग्राफ ले रहे थे.
I don't know if it's the image of beasts or of living creatures or what it will be.
अब मुझे नहीं मालूम कि ये वो पशु का चित्र आएगा या कोई जीव जंतु आएगा, समझ में नहीं आ रहा.
But thank you very much for your cooperation. That's very much appreciated.
लेकिन आपके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद, मैं कृतज्ञ हुआ.
I think it also is a nice lasting reminder, especially I think of the exercise of our beloved brother Dr. Koshy, his exercise in arranging this conference with others. And a photograph is always good to look back upon, isn't it? And it recalls memories for us.
इतना ही नहीं, ये सब स्मृति चिन्ह हैं, ये स्मरण दिलाते रहेंगे हमें. भाई कुशी मैथ्यू ने जो मेहनत यहाँ पर किया है उसके कारण हम सब इस प्रकार मिल पाए, और ये चित्र जो हमने खींचा है, जो फोटो हमने खींचा है, वो हमारे संबंध को हमेशा याद दिलाता रहेगा.
Now we're going to be thinking about the subject of the great tribulation.
अभी हम महाक्लेश काल ये विषय को देखेंगे.
And I think we all understand by now that the rapture is the next event to take place.
हम सब अभी तक ये समझ गए होंगे कि विश्वासियों को उठा लिया जाना ही अगला कार्यक्रम है परमेश्वर की पद्धति में.
And while certain events are going to take place in heaven during the day of Christ,
और मसीह के दिन में जब स्वर्ग में कुछ घटनाएं घट रही होगी,
and they are things concerning the church,
और वो कलीसिया से संबंधित बातें हैं.
The day of the Lord is going to begin on earth.
लेकिन प्रभु का दिन इस पृथ्वी पर होने वाला है.
And particularly the 70th week of that period that Daniel prophesied will begin.
विशेष करके दानियल ने जिस 70वें सप्ताह के बारे में भविष्यवाणी की थी, वो इस पृथ्वी पर आरंभ हो जाएगी.
So it is going to be a period of 7 years.
और वो 7 बरस का समय काल का होगा.
2 equal halves.
और 2 बराबर भागों में बटा होगा.
And we're going to read in a moment from Matthew chapter 24.
और इसलिए हम मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में देखते हैं.
Where he speaks too of those 2 halves of the week.
वहां जहां पर वो उन दोनों भागों के सप्ताह के दोनों भागों के बारे में हमें बताता है.
When we look at the detail of it, it seems that the whole period of 7 years is a period of tribulation.
जब हम उसके विवरण को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है वो 7 बरस बड़े क्लेश के समय होंगे.
But the latter half,
लेकिन उसका जो अंतिम भाग है,
is the great tribulation.
वो महाक्लेश काल होगा.
Now we'll look at Matthew chapter 24.
अब हम मत्ती 24 में देखेंगे.
And we will just note that from verse 4 to verse 8,
हम देखेंगे कि पद 4 से लेकर पद 8 तक,
the Lord Jesus is speaking here of events that will take place in the first half of the tribulation.
प्रभु यीशु मसीह उन घटनाओं के बारे में कह रहे हैं जो क्लेश काल के पहले भाग में घटित होगा.
The first half of those 7 years between verses 4 and 8.
पहले 7 बरस के पहले 3.5 बरस की घटनाएं 4 से लेकर 8 पद तक हम पाते हैं.
The features of those 4 apocalyptic horsemen are seen in these verses.
और इन 4 पदों में घोड़ों पर सवार होकर आने वाले उस संहार के दूतों के बारे में हम देख पाएंगे.
Verse number 5, the white horse.
5वें पद में सफेद घोड़े के बारे में देखते हैं.
Verse 6, the red horse.
6 में लाल घोड़े के बारे में देखते हैं.
Verse 7, the black horse.
और 7 में काले घोड़े के बारे में देखते हैं.
Verse 8, the pale horse.
और 8वें पद में हम जो अंतिम घोड़ा है उसको देखते हैं.
We have, I think, already discussed something about the horsemen that will be seen from Revelation in that period.
और हमने प्रकाशित वाक्य में से देखा घोड़ों पर सवार वो जो लोग हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है.
Notice the little word in verse 9, at least it begins the English verse, then shall they deliver you up to be afflicted.
और 9वें अध्याय के 9वें पद के आरंभ में जो शब्द है तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे.
That is marking the middle of the week.
वो उस सप्ताह के मध्य भाग को बता रहा है.
And Matthew goes on to explain in verse 4. The Lord goes on to explain in verse 15. Matthew records it.
और प्रभु यीशु मसीह पद 15 में उसका विवरण देते हैं.
Verse 15 says, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, Then let them which be in Judea flee into the mountains.
अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल नबी के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी देखो पाठक समझ ले तो वे जो यहूदिया में हैं पर्वतों पर भाग जाएं।
Verse 21.
पद 21.
For then shall be great tribulation.
क्योंकि ऐसा भारी क्लेश होगा।
Such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
जैसा ना तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ और ना कभी होगा।
And except those days be, should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened.
और यदि वे दिन घटाए ना जाते, तो एक भी प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे।
So now the overall general characteristic of the great tribulation.
इसलिए हमने अभी देखा उस महाक्लेश काल के में घटने वाली घटनाओं के चित्र को.
Is that it will be for Israel a time of trouble and distress such as they have never before experienced as a nation.
और ये ऐसा होगा कि इस्राएल के जीवन में ऐसा भारी क्लेश का काल होगा जो आज तक उनके जीवन में जब एक राज्य के रूप में तब तक घटी नहीं हो.
They have been hated and persecuted for centuries.
और सदियों से लोगों ने उनसे घृणा की है, उनको सताया है.
And the Jew has established a foothold in almost every nation of the world.
और यहूदियों को अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी के हर राष्ट्रों में उनके पांव पहुंचे हैं.
Particularly, they are very astute, very clever when it comes to the financial things.
विशेष करके आर्थिक मामलों में वे काफी बुद्धिमान हैं.
In fact, going back into the 15 and 1600s in the UK.
अगर हम यूके के 1500 ईस्वी और 1600 ईस्वी को अगर देखेंगे.
When King Henry VIII came to the throne.
जब हेनरी आठ राजा हेनरी आठ जब सिंहासन पर विराजमान हुए.
He found that the royal family and all the nobles of Britain.
उसने ये पाया कि ब्रिटेन के इंग्लैंड के जो राज्य के परिवार है राज परिवार है और जो प्रमुख लोग प्रभु लोग हैं
they were all bankrupt.
उनके पास कुछ भी नहीं था उनके पास पैसे नहीं थे.
They owed everything they had to Jewish money lenders in the UK.
उनके पास जो भी था सब कुछ उन्होंने यहूदी जो धन देने वाले उनके हाथों में दे दिया था.
You see, they despised the Jew and they trod him down.
और देखते हैं कि उन्होंने यहूदियों को सताया उनकी निंदा की.
But he didn't mind that.
लेकिन उसको सह लिया.
Because he would lend the money. He would lend them money.
क्योंकि वो पैसे देता था दूसरों को ब्याज में.
Big interest.
और ब्याज लेता था.
You want more money?
तुम्हें और अधिक पैसे चाहिए.
Okay, more interest.
और ज्यादा ब्याज के दर पे देता.
And all the nobles were bankrupt because of the Jews.
और यहूदियों के कारण उस समय के इंग्लैंड के सारे प्रभुओं के पैसे चले गए थे.
So King Henry VIII, he had a very brilliant idea.
इसलिए राजा हेनरी आठ जो इंग्लैंड के राजा थे उनके पास एक अच्छा विचार आया.
Find all the Jews.
उन्होंने सारे यहूदियों को चुना.
And throw them out.
और उनको बाहर फेंक दिया.
And he sent them all to Europe.
और उन सबको यूरोप में भेज दिया.
And so they settled in Europe as well.
इसलिए वो सब यूरोप के अन्य देशों में चले गए.
And they did the same thing again.
और उन्होंने फिर से वही काम किया वहां जाकर भी.
See, they control so much of world finance.
उनके पास धन के जो आर्थिक प्रणाली है उनका वो सब उनके अधिकार में था.
You see, one of the features of the millennial reign of the Lord Jesus is that the Jacob in Israel will be taken out of them.
और प्रभु यीशु मसीह के जो हजार वर्ष का जो राज्य है उसमें जो प्रमुख बात होगी कि इसराइल में से याकूब को अलग किया जाएगा.
Jacob is the schemer.
और याकूब जो है वो छल करने वाला है.
Jacob is the crafty man.
और ये याकूब जो है चालाकी से काम करने वाला है.
What are the first words recorded of Jacob in the Bible?
याकूब के बारे में पहले शब्द क्या हम पाते हैं?
Do you know? Jacob's first words? Sell me. Sell me.
वो है बेच मुझको बेच.
You see, that's the spirit of Jacob.
देखिए याकूब के अंदर ऐसी एक आत्मा है.
Sell me. And that's been the same through the world ever afterwards.
मैं खरीद लूंगा मुझको बेचो और दुनिया में जहां भी गए ऐसा ही हुआ है.
It was Jacob who had the dream in Genesis 28 about the way cast up to heaven.
याकूब को उत्पत्ति 28 में स्वर्ग के वो सीढ़ी दिखाई दिया.
And the Lord spoke about that dream to Nathanael at the end of John chapter 1.
और यूहन्ना उसके पहले अध्याय के आखिरी भाग में प्रभु यीशु मसीह ने यही बात नथानियल से कहा.
Nathanael was surprised that the Lord had seen him under the fig tree.
नथानियल आश्चर्यचकित हो गया कि उस अंजीर के वृक्ष के नीचे यीशु मसीह ने उसको देखा था.
The Lord said, "Does that surprise you, Nathanael?"
प्रभु ने उससे पूछा, हे नथानियल, तू आश्चर्यचकित हो गया.
You're going to see greater things than these.
तू अब इससे भी बड़ी बातों को देखने जा रहा है.
What did the Lord say about Nathanael?
प्रभु यीशु मसीह ने नथानियल के बारे में क्या कहा?
Behold an Israelite indeed, in whom is no guile.
देखो ऐसा एक इस्राएली जिसके अंदर कोई भी छल नहीं.
So you check the word guile.
अगर आप छल शब्द को देखेंगे,
and you find that it comes from the word Jacob.
अगर आप देखेंगे तो ये शब्द क्या उत्पत्ति याकूब शब्द से होता है.
And the Lord was saying about Nathanael, behold an Israelite indeed in whom is no more Jacob.
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नथानियल को देखकर यही कहा, देखो एक इसराइली जिसके अंदर याकूब नहीं है.
The nation is going through the same process as the man Jacob went through.
और इस्राएल उसी अवस्था से गुजर रहा है जो वह पुरुष याकूब गुजरा था.
Remember when Jacob came to Peniel in Genesis 32?
आपको याद होगा उत्पत्ति के उसके 32वें अध्याय में जब याकूब पीनियल नामक जगह पर आया.
And a man wrestled with him through the night.
और हम पढ़ते हैं कि एक पुरुष ने उसके साथ वहां पर लड़ाई की.
Says, and Jacob was left alone.
हम पढ़ते हैं कि याकूब अकेला रह गया.
And the nation will be left alone.
और इसराइल भी अकेला रह जाएगा.
And God will wrestle with them.
और परमेश्वर उनके साथ लड़ाई करेगा.
And then as they wrestled,
और जैसे वो कुश्ती लड़ रहे थे,
the man, the angelic person with whom he wrestled, it may even have been a divine person with whom he wrestled.
वो जो स्वर्ग से आए वो जो पुरुष था, हो सकता है वो ईश्वरीय पुरुष भी क्यों ना हो सकता है.
He said, "What is your name?"
उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है?
What is your name?
तेरा नाम क्या है?
Said, "It's Jacob."
उसने कहा, मेरा नाम याकूब है.
Why?
क्यों उसने ऐसा कहा?
20 years before.
20 बरस पहले.
And his father said, "Who art thou, my son?"
उसके पिताजी ने उससे पूछा था, तू कौन है मेरा बेटा?
He said, "I'm Esau."
उसने कहा, मैं ईसो हूं.
He's a liar.
वो झूठा था.
And he was a cheat.
और वो धोखा देने वाला था.
But the Bible never says a bad word about Jacob.
लेकिन पवित्र शास्त्र में याकूब के इस नाम के बारे में नहीं, और कहीं नहीं कहा गया है.
But now God is bringing that man right back to the beginning.
लेकिन अब परमेश्वर उस पुरुष को उसके जीवन के आरंभ में ले आ रहा है.
Who are you?
तू कौन है?
What is your name?
तेरा नाम क्या है?
It's Jacob.
याकूब.
The Lord said, "Fine, your name is no more Jacob, it's Israel."
प्रभु ने कहा, सही बोला, अब से तेरा नाम याकूब नहीं, इसराइल होगा.
Because thou hast prevailed and thou art a prince with God.
क्योंकि तूने आज सामर्थ पाया है, विजय पाई है, इसलिए तू प्रभु का राजकुमार होगा, परमेश्वर का राजकुमार होगा.
Jacob was so confident about his own capabilities.
याकूब अपने अंदर के सामर्थ के बारे में उसे बहुत गर्व था.
He knew that God had a plan.
उसे मालूम था परमेश्वर की एक योजना है.
But he, Jacob, he could work it out his way.
लेकिन याकूब अपनी योजनाओं को बना रहा था.
So if he's going to increase his flocks, he will choose out all the lambs that have got marks in them.
और अगर वो अपने भेड़ों को बढ़ाना चाहता है तो उनको चुन रहा है जिनमें दाग हो.
But that wasn't God's way.
लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी.
God was looking for a lamb that was spotless.
परमेश्वर एक ऐसे मेमने के लिए देख रहा था जिस पर दाग ना हो.
You see how that man's ways are not God's ways.
देखिए मनुष्य के योजनाएं मार्ग परमेश्वर की योजनाओं में कितना फर्क
है. And eventually God wrestled and he brought Jacob very, very low.
और परमेश्वर ने उससे कुश्ती लड़ा और उसे बिल्कुल नीचे ले आया.
Until he confessed who he was.
और उस अवस्था में ले आया जहां पर उसके मुंह से उसने स्वीकार किया वो कौन है.
And all his own efforts were gone.
और उसकी सारे स्वयं की सामर्थ और ताकत गई.
And he cast himself upon his God.
और उसने अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में दे दिया.
And that's when God turned Jacob into a prince.
और तब परमेश्वर ने याकूब को एक राजकुमार में बदल दिया.
What did God call him once?
परमेश्वर ने उसको एक बार क्या बुलाया?
Thou worm.
एक बार उससे कहा, हे कीड़े याकूब.
That's what he was low and he was moving amongst the dirt of the world.
वो एक कीड़ा समान था, पृथ्वी की गंदगी के बीच में चल रहा था.
My little granddaughter, she likes being told a story before she goes to bed.
मेरी जो पोती है उसकी इच्छा है कि वो सोने से पहले उसे कुछ कहानी सुनाई जाए.
I saw her book on her bookshelf.
मैंने उसके बुक शेल्फ पे एक पुस्तक देखा.
I said, what's that story about?
मैंने उससे पूछा उस पुस्तक में कौन सी कहानी लिखी हुई है.
Oh, that's a good one, granddad.
उसने कहा कि दादाजी वो तो बहुत अच्छी कहानी है.
You see, there is this beautiful princess.
देखो उसमें एक अच्छी राजकुमारी है, सुंदर राजकुमारी है.
And she wants a husband.
और उसको एक पति की जरूरत है.
And there is this frog.
और यहाँ पर एक मेंढक है.
Do you have this story in India?
ये कहानी इंडिया में है, no? भारत में है.
Yes. And she kisses the frog.
और उस मेंढक को वो चूमती है.
Frog becomes a handsome prince.
और वो मेंढक एक अच्छा राजकुमार में बदल जाता है.
They live happily ever after.
और वे हमेशा आनंद के साथ रहते हैं.
I said, do you like the story about the frog that becomes a prince?
मैंने उससे पूछा एक मेंढक जो एक राजकुमार में बदल गया, ये कहानी तुम्हें अच्छी लगती है?
I said, that's a fairy story. That's not true.
मैंने कहा कि ये काल्पनिक कहानी है, ये सत्य नहीं है.
Would you like granddad to tell you a true story?
मैंने उससे कहा कि आप चाहते हैं कि दादाजी तुम्हें एक अच्छी कहानी बताएं, सच्ची कहानी बताएं?
About a worm that becomes a prince.
मैं एक कीड़ा जो एक राजकुमार बन गया, वो कहानी मैं तुमको आज रात बताना चाहता हूँ.
Is that story, granddad?
उसने कहा कि कैसे कहानी है दादाजी?
Yes, and we told her the story of Jacob.
हाँ करके मैंने कहा और उसे याकूब की कहानी बताया.
And God turned a worm into a prince.
और परमेश्वर ने कैसे एक कीड़े को एक राजकुमार में बदल दिया?
A worm groveling in the dirt, and he raised him to be a prince.
एक कीड़ा जो मिट्टी में दबा हुआ घूम रहा है, परमेश्वर ने उसे वहां से ऊंचा उठाया, एक राजकुमार बना के खड़ा कर दिया.
And that is what God is going to do with the people that came from Jacob.
और याकूब से निकलने वाले लोगों के साथ परमेश्वर एक दिन यही कर्म करने काम करने आ रहा
है. They bear all the features of their father.
इनके अंदर उनके पिता की सारे स्वभाव हम देखते हैं.
They know God has got a purpose for Israel.
उनको सब उन सबको मालूम है कि परमेश्वर के इसराइल के संबंध में एक योजना है.
But they're going to achieve it in their strength.
लेकिन वो उस योजना को अपने सामर्थ्य में, अपनी ताकत में हासिल करना चाहते हैं.
They're going to do it their way.
वो उसे अपने मार्ग में करना चाहते हैं.
Greatness is going to be sell me.
और ये जो महानता है वो इसके द्वारा होगा कि मुझको बेचो, मुझको बेचो.
And in the great tribulation, God is going to bring Israel low, very low.
और उस महाक्लेश काल में परमेश्वर इसराइल को बहुत नीचे ले आएगा.
But God only ever brings his people low so that he can raise them up again.
परमेश्वर अपने लोगों को इसलिए नीचे अवस्था में लाता है ताकि एक दिन वो उनको उठा सके.
And the nation that is brought low in the great tribulation.
और इस महाक्लेश काल में यह देश या इसराइली प्रजा बहुत ही नीचा ले जाएगा.
Will be Israel, a prince with God in the days of the millennium.
और हजार वर्ष के उस युग में ये लोग परमेश्वर के राजकुमार बन जाएंगे.
So now if you go back to Jeremiah and chapter 30.
इसलिए अगर हम यरमिया की नबी की पुस्तक उसके 30वें अध्याय में जाएंगे. यरमिया 30
and you'll see, could we have some lights on please here? There's no more, are there? That's okay, doesn't matter. We know it anyway, that's fine. We know the scriptures. No, don't worry, sorry, I thought that they were not on, but that's all right. Look at Jeremiah chapter 30 please.
यरमिया नबी की पुस्तक उसके 30वें अध्याय में जरा आएंगे.
And our brother is going to read from verse number 2 of Jeremiah 30.
यरमिया 30 के दो पद से.
And down to the end of verse number 10.
और पद 10 तक हम पढ़ेंगे.
Or verse number 11.
यरमिया 30 उसका 2 से.
2 to verse number 11. Thank you, dear brother.
2 से 11 पद तक हम पढ़ेंगे. यरमिया 30 2 से 11. ध्यान दीजिए. इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जो वचन मैंने तुझसे कहे उन सबको एक पुस्तक में लिख ले, क्योंकि देखो ऐसा दिन आने वाला है, यहोवा कहता है, कि मैं अपनी प्रजा इसराइल और यहूदा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा. मैं उनको उस देश में भी जिसे मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा लाऊंगा, और वे उसके अधिकारी होंगे. यहोवा की यही वाणी है. जो वचन यहोवा ने इसराइली और यहूदियों के संबंध में कहे वे ये हैं. यहोवा यो कहता है, मैंने आतंकित करने वाले तथा भय का शब्द सुना है, कहीं भी शांति नहीं है. पूछकर तो देखो, क्या पुरुष के बच्चा उत्पन्न हो सकता है? तो फिर क्यों मैं प्रत्येक पुरुष को जच्चा के समान अपने हाथों से कमर दबाते हुए देखता हूं? क्यों सबके मुंह पीले पड़ गए हैं? हाय, वह दिन कैसा भयंकर है! कोई अन्य दिन उसके समान नहीं. यही दिन याकूब के उत्पीड़न का है, परंतु वह उसे छुड़ा लिया जाएगा. उस दिन ऐसा होगा, सेनाओं के यहोवा की वाणी है, मैं उसके जुए को उसकी गर्दन से तोड़ डालूंगा, और उनके बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, फिर परदेशी उन्हें कभी भी अपने दास नहीं बना पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे और अपने राजा दाऊद की, जिसे मैं उनके लिए नियुक्त करूंगा। इसलिए यहोवा कहता है, हे याकूब मेरे दास भयभीत ना हो, हे इसराइल हताश ना हो, क्योंकि देख मैं तुझे दूर दूर से और तेरे वंशजों को बंधुआई के देश से छुड़ा लाऊंगा। याकूब लौट आएगा और वह चैन व सुख से रहेगा और कोई उसे भयभीत ना करेगा। यहोवा कहता है, मैं तुझे बचाने के लिए तेरा साथ हूं, क्योंकि मैं उन सब देशों को जहां मैंने तुझे तितर बितर किया था पूर्णतः नष्ट करूंगा, फिर भी तुझे पूर्णतः नष्ट नहीं करूंगा, परंतु मैं न्यायपूर्वक तेरी ताड़ना करूंगा और दंड दिए बिना तुझे नहीं छोड़ूंगा।
Thank you. You see in verse number 7, Alas, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble.
देखिए पद 7 में एक और बार हम पढ़ेंगे, हाय वह दिन कैसा भयंकर है, कोई अन्य दिन उसके समान नहीं, यही दिन याकूब के उत्पीड़न का है।
But he shall be saved out of it.
परंतु वह इससे छुड़ा लिया जाएगा।
See, brethren, we are reading this before the event.
देखिए भाइयों, ये घटना घटने के पहले हम इस बात को पढ़ रहे हैं।
But there will be God's people who read this during the event.
लेकिन परमेश्वर के लोग तब होंगे जो उस घटना के दौरान इन बातों को पढ़ेंगे।
In the darkest, darkest days of the nation's history.
इज़राइल के भयंकर अंधकार के दिन होंगे।
There will be a faithful company amongst God's people.
और परमेश्वर के लोगों के झुंड में से एक विश्वासियों की झुंड होगा।
And they will be searching the scriptures.
वो परमेश्वर के शास्त्र की खोज करेंगे।
Humanly speaking, it seems that the nation must be exterminated.
मानसिक रूप से अगर हम कहें तो ऐसा लगेगा कि वो राष्ट्र समाप्ति की ओर है।
Oh, they know that it's the time of Jacob's trouble, all right.
और उनको मालूम हो जाएगा कि याकूब के एक संकट का समय आ गया है।
But what the scriptures will confirm to them is this.
लेकिन शास्त्र उनको व्यक्त रूप से ये बताएगा,
He shall be saved out of it.
कि वह उसमें से बच निकलेगा।
It's a strange picture here, really, in Jeremiah 30.
यरमिया के नबी की पुस्तक उसके 30वें अध्याय में एक अजीब सा चित्र हम देखते हैं।
Verse number 6.
पद 6 को देखिए।
Ask ye now and see whether a man doth travail with child.
पूछ कर तो देखो, क्या पुरुष के बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं?
Wherefore do I see Every man with his hands on his loins, as a woman would in travail.
तो फिर क्यों मैं प्रत्येक पुरुष को जच्चा के समान अपने हाथों से कमर दबाते हुए देखता हूं?
It is interesting that he is using as a picture of the suffering of these people in the great tribulation.
और ये बड़ा आश्चर्य की बात है, इस चित्र को परमेश्वर की प्रजा महाक्लेश काल से जब गुजरेगी उसको दर्शाने के लिए उपयोग कर रहा है।
He is using the picture of a woman with a long and difficult travail.
यहां पर एक स्त्री के प्रसव पीड़ा के उस कष्ट को यहां पर दिखाया जा रहा है।
And Jeremiah asked the question, did you ever see a man like that?
और जरमिया एक सवाल पूछ रहा, कभी एक पुरुष को इस प्रकार स्त्री के समान व्यवहार करते हुए देखा है?
Say, no, of course not. That's impossible. A man has never known.
हम कहेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पुरुष कभी भी बच्चा जन्म नहीं देता।
The Lord is really saying through Jeremiah, no, you're right. A man has never known what it is to travail in labor.
तो परमेश्वर जरमिया के द्वारा बता रहा है कि प्रसव की पीड़ा को एक पुरुष कभी भी नहीं समझ सकता।
That's how remarkable this suffering of the nation will be.
और इज़राइल देश की जो कठिनाई के क्षण होंगे बिल्कुल ठीक ऐसे ही होंगे।
I see every man clutching his loins.
हम यहाँ पढ़ते हैं कि हर एक पुरुष अपने कमर को दबाए हुए रखा है।
And the fierce cramping pain that brings paleness to their face is upon them.
और इतना भयंकर दर्द है कि उनके मुंह पीले पड़ गए हैं।
Why does he use that picture?
परमेश्वर ने इस चित्र का उपयोग क्यों किया?
Because those pains that our women have to endure,
क्योंकि ये दर्द जो एक स्त्री गुजरती है,
are amongst some of the greatest of pains.
वो मानव में सबसे बड़े दर्दों में से एक है।
But in a moment, the pain is replaced by joy when a man child is brought into the world.
लेकिन एक पुरुष बच्चे का जन्म जब उस पृथ्वी पर होता है, वो दर्द पल भर में मिट जाता है।
Thus it will be, he says, with the suffering of the nation.
परमेश्वर कहता है, इस इज़राइल देश का दुख संकट का काल भी ऐसे ही दूर हो जाएगा।
The kind of pain that causes even a brave woman to double over and scream.
एक ऐसा दर्द जो एक हिम्मत वाली स्त्री को भी चीखने और चिल्लाने के लिए विवश कर देती है।
That's going to be the pain of the nation.
और इस्राएल प्रजा का भी दर्द ऐसा ही होगा।
And suddenly, with one great final surge of pain, the child is born.
और अचानक दर्द की एक पीड़ा का एक दौर होगा और देखिए बच्चे का जन्म हो गया.
And in a moment, the pain is forgotten and the joy is there.
और क्षण भर में पल भर में दर्द दूर हो गया और आनंद आ गया.
Turn to Revelation chapter 12.
प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय में आइए.
Now, Revelation chapter 12 is one of those chapters that is there to explain things that are going on in the narrative.
और प्रकाशित वाक्य 12 एक ऐसा अध्याय है जहां पर उस क्लेश के दौर में जो कुछ हो रही है उसको विवरणात्मक रूप से दिया गया है.
I think there has been a session, hasn't there, with the different judgments of the tribulation period.
मुझे ऐसा लगता है कि महाक्लेश काल में जो अनेक न्याय होने वाले हैं उनके बारे में आपका एक क्लास हो चुका है.
In the first half of the tribulation,
और क्लेश काल के पहले भाग में
6 of the seal judgments are poured out.
और जो मुहर के जो न्याय है वो उंडेले जाएंगे.
The 7th seal judgment,
और जो सातवां मुहर न्याय होता है,
is the 7 trumpet judgments.
वो सात तुरही के न्याय होंगे.
And so those 7 trumpet judgments begin in the middle of the week.
और ये सात तुरही के जो न्याय होंगे वो इस सप्ताह के मध्य भाग में होंगे.
So as the great tribulation begins in the middle of the week,
और सप्ताह के मध्य में जैसे महाक्लेश का दौर या काल शुरू होता है,
so those trumpet judgments begin.
और ये तुरही के जो न्याय होंगे वो शुरू होंगे.
Chapter 8 through to the end of 11 in Revelation tells you about those trumpet judgments.
और 8वें अध्याय से लेकर 11वें पद तक प्रकाशित वाक्य के उसमें हम तुरही के जो फूकी जाती है उससे जो न्याय होता उसके बारे में हम देखते हैं.
The 7th of the trumpet judgments,
और तुरही का जो सातवां जो न्याय होता है,
is the outpouring of the 7 bowl judgments.
और उसमें जो कटोरों का न्याय होता है जो उंडेला जाता है उसका हम देखते हैं.
You don't read about those until chapters 15 and 16.
और 15 और 16 अध्याय तक हम उसके बारे में नहीं देखते.
So in between, certain things are explained to us.
और इसके बीच में कुछ बातें हमें समझाई गई है.
And chapter 12,
और अध्याय 12 में,
says in verse 1, there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars.
एक में ऐसा लिखा है 12 के, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री सूर्य पहने थी, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा तथा सिर पर 12 तारों का एक मुकुट था.
And she being with child cried, travailing in birth and pained to be delivered.
वह गर्भवती थी तथा बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसव पीड़ा के कारण चिल्ला रही थी.
And so this symbol of the nation of Israel now, symbolized by a woman great with child and in pain ready to be delivered.
और इस्राएलियों की जो प्रजा है उनके जीवन में अभी जो घटना घट रही है उसको एक स्त्री की प्रसव पीड़ा के साथ उसकी तुलना की गई है.
And he says in verse 3, there appeared another wonder in heaven.
और पद 3 में पढ़ते हैं कि स्वर्ग में एक और चिन्ह दिखाई दिया.
A great red dragon having 7 heads, 10 horns and 7 crowns upon his head.
और देखो लाल रंग का एक विशाल अजगर था, उसके 7 सिर और 10 सिंह थे तथा उसके सिरों पर 7 मुकुट थे.
We know who this dragon is.
हमें मालूम है कि यह अजगर कौन है.
It is Satan himself.
यह स्वयं शैतान है.
So now his tail, verse 4, drew the third part of the stars of heaven and did cast them to the earth.
उसकी पूंछ ने आकाश के तारों का एक तिहाई भाग खींचकर पृथ्वी पर फेंक दिया.
And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered.
वह अजगर उस स्त्री के समक्ष खड़ा हो गया जो बच्चे को जन्म देने वाली थी.
For to devour her child as soon as it was born.
कि जब बच्चे का जन्म हो तो वह उसको खा जाए.
What a picture.
कितना भयंकर एक चित्र है.
Who is the child who is going to be brought forth?
यह कौन सा बच्चा है जिसका जन्म होने वाला है?
Who is the child that Satan wants to devour the very moment it is born?
यह कौन सा बच्चा है जिसके जन्म के साथ ही अजगर उसे निगल लेना चाहता है?
As John watched,
जैसा यूहन्ना देख रहा था,
verse 5,
पांचवें पद ने,
she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron.
तो हम पढ़ते उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो लोहे के दंड से सब जातियों पर शासन करेगा.
This is the nation's Messiah.
ये उस इस्राएली प्रजा का मसीहा है.
This is the Lord Jesus.
ये प्रभु यीशु मसीह का चित्र है.
The devil knows that he's coming.
और शैतान को मालूम है वो आएगा.
This is the final battle now.
और अब ये अंतिम युद्ध है.
Who is going to have the kingdom?
अब राज्य किसका होगा?
Me, Lucifer, the shining one of Ezekiel 28.
और मैं इज़ेकियल 28 में बताया गया वो लूसीफर हूं जो चमकता सितारा हूं.
Or a man.
या एक मनुष्य.
It takes us right back to that very battle at the beginning, doesn't it?
हमें वो आरंभ में जो युद्ध हुआ था वहां पर हमारे ध्यान को लेकर जाता है.
When in the beginning in the garden God made man and gave to him dominion.
जब अदन के बाग में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसको सारे बातों के ऊपर प्रभुत्व दिया.
And Lucifer said, I want it.
लूसीफर ने कहा मुझे ये चाहिए.
And now the story is coming to its end.
अब कहानी उसकी समाप्ति की ओर आ रही है.
He is now making his final push for the kingdom.
अब वो उस राज्य को प्राप्त करने के लिए अपना अंतिम लड़ाई लड़ रहा है.
To get it, he's got to devour the man.
और उसे हासिल करने के लिए उसे इस पुरुष को उस मनुष्य को हराना होगा.
But in the imagery of Revelation 12, it says her child was caught up unto God and to his throne.
और लेकिन हम प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में जो चित्र दिया गया उसमें हम देखते हैं कि यह बच्चा परमेश्वर उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया.
In other words, the child was in a place where the devil could never reach it.
कि यह बच्चा एक ऐसे जगह पर पहुंच गया जहां पर शैतान कभी पहुंच नहीं सकता.
Now if he can't devour the child,
अगर वो उस बच्चे को खा नहीं सकता,
he'll devour the mother.
अब उसकी मां को वो समाप्त करना चाहता है.
So now he goes after Israel.
इसलिए वो इज़राइल के पीछे लगा हुआ है.
Verse 6.
पद 6 को देखिए.
And the woman fled into the wilderness where she had a place prepared of God that they should feed her there 1,260 days, 3.5 years.
तब वह स्त्री जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर ने उसके लिए एक स्थान तैयार किया था कि 1,260 दिन तक वहां उसका पोषण किया जाए जो ठीक 3.5 साल है.
So now this is the time when in the last half of the week, the great tribulation.
इसलिए उस महाक्लेश काल के अंतिम भाग में दौर में
the nation of Israel is particularly pursued by Satan.
इसराइलियों के पीछे शैतान लग गया है.
Now you see we're seeing two sides of the one coin.
हम एक सिक्के के दो भाग को यहां देख रहे थे.
The nations of men hate Israel.
और जो पृथ्वी के मनुष्यों के जो राज्य हैं वो इसराइल से घृणा करते थे.
The nations of men know that for years world politics have hinged upon Israel.
और दुनिया के मनुष्य ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि सदियों से विश्व इतिहास का राजनीतिक ध्रुव जो है इसराइलियों के साथ जुड़ा हुआ है.
And under the world ruler, they will say, okay, given the choice, we don't want to destroy Israel.
और उस विश्व शासक से वो कहेंगे अगर हमें चुनने का अवसर दिया जाएगा तो हम नहीं चाहेंगे कि इसराइल का नाश हो.
बट फॉर द सेक ऑफ होल वर्ल्ड ऑर्डर,
लेकिन सारे पृथ्वी पर शांति बहाल हो.
फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
और सारे पृथ्वी के देशों के भविष्य को याद ध्यान में रखते हुए,
इट इज बेटर दैट शी गोस.
चाहे हम ऐसा करते हैं उसे समाप्त कर दे.
We will destroy Israel for the good of the rest of the world.
और सारे पृथ्वी के देशों की भलाई के लिए आओ हम इसराइल देश को नाश कर दें.
Can you see how their thinking is like that thinking of Nimrod in Genesis chapter 11?
आप जरा ध्यान अपनी और निमरोद के विचारों को ले जाए कि क्या इनके विचार भी निमरोद के विचार के समान नहीं है जो उत्पत्ति में हम पाते हैं.
Of men who are on the verge of creating their own world and their own world order, independent of God.
जहां पर मनुष्य अपना एक संसार बनाना चाहता है, अपना एक शासन प्रणाली बनाना चाहता है, जिसमें परमेश्वर को स्थान ना हो.
But chapter 12 is showing us.
लेकिन 12वां अध्याय में याद दिलाता है.
That behind the movement of nations and world armies.
कि इस संसार के जो राष्ट्र हैं और यहां की जो सेनाओं का चाल है उसके बीच में
इज द डेविल हिमसेल्फ.
कि स्वयं शैतान का काम है.
बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ द नेशंस ऑफ मैन फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर.
आज पृथ्वी पर जब मनुष्य जाति एक नए विश्व प्रणाली के चक्कर में लगे हुए हैं,
देयर इज एक्चुअली द एम्बिशन ऑफ सैतन टू सेट हिमसेल्फ अपॉन द थ्रोन ऑफ दिस वर्ल्ड.
और इसके द्वारा शैतान के मन में एक बहुत बड़ी अभिलाषा है कि अपने सिंहासन को इस पृथ्वी पर सर्वोपरि बना दे.
बट द डेविल्स टाइम हैज कम.
लेकिन शैतान का समय आ गया है.
The man he wants to devour is on the throne of God in heaven.
जिस बालक को वो खा लेना चाहता है वो परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान है स्वर्ग में.
That's where Satan dwells, not of course in the throne room of heaven, but he dwells in the heavens.
और हम जानते हैं शैतान इन स्वर्गीय स्थानों में निवास करता है.
It seems that perhaps in his hatred of Christ that he makes some kind of assault within heaven to get to the man child.
और ऐसा हमें दिखता है कि वो इस अपनी नफरत की भावना के कारण वो स्वर्गीय स्थानों में युद्ध लड़ता है ताकि उस स्त्री उस पुरुष उस बालक को हरा पाए.
And verse 7 says, and there was war in heaven.
हम यहां सातवें पद में इस बात को देखते हैं कि स्वर्ग में युद्ध हुआ.
Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels.
Mikael aur uske dood ajgar se lade, ajgar aur uske dood bhi lade.
Who could think it possible?
Ye aisa sambhav ho sakta hai karke kaun soch sakta hai?
And yet the Hebrew epistle tells us that the very heavens themselves are not clean.
Aur Hebraniyon ki patri mein padhte hain ki jo swarg log ko hum dekhte hain wo pavitra nahi hai, shuddh nahi hai.
That's where sin originated.
और पाप का आरंभ वही हुआ था.
Not in the very dwelling place of God.
परमेश्वर जो स्थान पर रहते वहां नहीं.
But in the realm of the heavens.
लेकिन स्वर्गीय जो स्थान है.
So that even they need to be cleansed, says the writer to the Hebrews, with better sacrifices than these.
इसलिए इब्रानियों की पत्री लिखने वाला उस अच्छे बलिदानों के स्मरण दिलाते हुए कहता है वहां पर भी शुद्धिकरण की आवश्यकता है.
Satan looks and he sees Israel now.
शैतान अभी इसराइल की ओर देखता है.
Caesar, he sees her as a woman great with child.
और वो उसे एक एक बच्चे के साथ एक स्त्री के रूप में देखता है.
And the purpose of her pain,
और उसके गर्भ का उसके प्रसव पीड़ा का दर्द जो है,
is that she might produce a man.
कि वो एक पुरुष को जन्म दे.
And the man is going to be the Christ of God who descends from heaven.
और वो पुरुष स्वर्ग से उतर कर आने वाला मसीह है.
So he assaults almost the very throne of God in verse 7.
और पद 7 में हम देखते हैं कि युद्ध के कगार तक वो युद्ध को स्वर्ग के कगार तक युद्ध को ले गया.
But he couldn't prevail.
लेकिन वो विजयी ना हुआ.
So verse 9 says that great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world.
पद 9 में इसलिए हम पढ़ते हैं तब वो बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है.
He was cast out into the earth and his angels were cast out with him.
वो पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए.
Oh, what terrible days those days of tribulation will be.
उन दिनों में कितना भयंकर क्लेश के दिन होंगे.
Because then Satan himself and his angels will actually be earth dwelling.
क्योंकि उस समय शैतान और उसकी सारी सेना पृथ्वी पर रहेगी.
People today, stupid people, they play with satanic things, they play with the occult.
और आज कई लोगों को हम देखते हैं जो इन जादू टोनों के बातों में लगे हुए हैं.
They think it's fun, they think it's a silly thing.
वो सोचते हैं कि ये जादू टोने की बातें ऐसे मजाक हैं.
But what will it be when the devil and his angels are actually earth dwelling?
लेकिन सोचकर देखिए जब शैतान और उसके सारे दूत इस पृथ्वी पर रहने लगेंगे तो यहां की अवस्था क्या होगी.
And look what he does.
और देखिए वो क्या करता है.
Verse 13. What is that noise?
हम पद 13 में पढ़ते हैं.
Is somebody out there with a stick or something? Huh?
Okay, the birds.
It's a bird on the roof, is it? Ah, the great birds. I was preaching in Sri Lanka once, you know. You know, the black birds are often a picture of Satan and his emissaries.
जब मैं श्रीलंका में था ऐसे ही घटना घटी थी. ये जो पक्षी होते हैं ये एक तरह से काले पक्षी शैतान के एक दूत के समान ही है.
I was preaching on Ephesians chapter 6.
मैं इफिसियों की पत्री छठवें अध्याय पर भाषण दे रहा था.
You wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers.
वहां पर लिखा गया था कि तुम्हारा जो युद्ध है तुम्हारी जो कुश्ती है मांस और लहू से नहीं लेकिन आकाश में स्वर्ग में दिखाई देने वाले ताकतों से है.
How do believers stand against the devil?
और एक शैतान के विरुद्ध में एक विश्वासी कैसे खड़े हो सकता है.
And Sri Lanka is full of devilry.
और आपको मालूम है अगर श्रीलंका को देखेंगे तो शैतान का घर है, अड्डा है.
As I was preaching,
जब मैं प्रचार कर रहा था,
the big black birds came down and there were big shutters on the windows and they all settled on those.
और बड़े बड़े काले पक्षी आए और जो खिड़की हैं वहां पर शटर लगे हुए थे.
And they made such a noise that I couldn't make myself heard.
उन्होंने इतनी आवाज की कि मैं अपने भाषण को जारी नहीं रख पाया.
And the brethren jumped up and they banged the shutters and the birds flew off.
और भाई लोग उठ गए और वो दौड़ कर गए, उन्होंने खिड़कियों को हिलाया, पक्षी भाग गए.
They sat down, the birds came back.
और वो आके बैठे, चिड़िया भी आकर बैठ गया.
And I could see the brethren were frightened.
और मैं आपको बता दूं, उन भाइयों के आंखों में भय दिखाई दे रहे थे.
Something satanic about the whole thing.
क्योंकि इन सारी बातों में कुछ शैतानिक बात दिख रही थी.
I said, brethren, we don't need to preach, we need to pray.
और मैंने भाइयों से कहा, आज संदेश की जरूरत नहीं है, आइए हम घुटनों में आकर प्रार्थना करें.
We cry to the God of heaven to take that evil force away from the place where we were.
और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इन दुष्ट आत्मा की शक्तियों को यहां से लेकर चले जाए.
When we finished praying, they all flew away.
और जैसे हमने प्रार्थना समाप्त किया, ये सारे पक्षी उड़कर चले गए.
These are real things.
ये सब वास्तविक चीज है.
Very real things.
ये सारी घटनाएं वास्तविक है.
Satan knows that his days are numbered.
शैतान को मालूम है उसके दिन गिने गए हैं.
But he is fighting like a rat that is cornered.
लेकिन वो एक चूहे के समान लड़ रहा है जो किनारे पर आ गया है.
So verse 13 says.
इसलिए पद 13 में कहा गया है.
When the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child.
जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जिसने पुत्र को जन्म दिया था सताने लगा.
And to the woman were given two wings of a great eagle.
पर उस स्त्री को एक बड़े उकाब के दो पंख दिए गए.
That she might fly into the wilderness into her place where she is nourished for a time and times and half a time from the face of the serpent.
इसलिए दिए गए कि वह अजगर के सामने से जंगल में उस स्थान को उड़ जाए जहां एक काल कालों और अर्धकाल तक उसका पालन पोषण किया जाए.
So Satan is pursuing the faithful remnant of Israel in that great tribulation.
और उस महाक्लेश काल के उस दौर में शैतान बचे हुए इसराइलियों के पीछे लगा हुआ है.
She is being divinely preserved.
और यह उस इसराइल भाग देश भाग को प्रजा को संभाला जा रहा है.
She is being divinely fed.
और ईश्वरीय शक्ति से उसे खिलाया जा रहा है.
You see, if it were not for divine protection, Israel would be 100% destroyed.
अगर यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर ईश्वरीय ताकत और संरक्षण को नहीं मिला होता तो यहां इसराइल निश्चित रूप से खत्म हो गया होता.
But God is preserving his elect.
परमेश्वर अपने चुने हुओं को संभालता है.
We spoke, didn't we, about those three brave men in the book of Daniel who were cast into the furnace?
हमने उन तीन पुरुषों के बारे में देखा जो हिम्मत वाले थे, जिन्हें जलते हुए आग की भट्टी में फेंक दिया गया.
How many were in the furnace? Three men.
कितने लोग थे उस भट्टी में? तीन पुरुष.
King says, I see four men.
लेकिन राजा कहता है, मैं तो चार पुरुषों को देखता हूं.
The Lord was with them.
क्योंकि प्रभु स्वयं उनके साथ था.
In all the intense heat of the furnace, the Lord was with them.
और उनके उस भट्टी के उस भयंकर गर्मी में प्रभु उनके साथ था.
And when they came out,
जब वो बाहर आए,
so great is the deliverance of God.
परमेश्वर के छुटकारे की महानता को जरा देखिए.
Not even the smell of smoke was upon their garments.
उनके बदन से धुएं की बांस भी नहीं आ रही थी.
This is the time of Jacob's trouble.
ये याकूब के क्लेश का दौर समय है.
But he shall be delivered out of it.
लेकिन परमेश्वर उसे वहां से छुड़ा ले आएगा.
When God delivers his people, he delivers them totally.
जब परमेश्वर अपनी प्रजा को छुड़ाता है, वो संपूर्ण रूप से उन्हें छुड़ाता है.
When he would deliver them out of Egyptian bondage.
जब मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया.
When their crying and their tears had arisen to him.
और जब वो दुख के कारण आंसुओं को बहा रहे थे, उनके आंसू प्रभु के सम्मुख जब पहुंचे.
God gave Moses a sign.
परमेश्वर ने मूसा को एक चिन्ह दिया.
It was a bush that was burning.
और उसने एक झाड़ी को जलते हुए देखा.
But even though it burned, it was not consumed.
उसने देखा कि झाड़ी तो जल रहा है, लेकिन वो संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो रहा.
At the very beginning, when God called His people out, He gave them a picture of what it would be at the end of their time on earth.
और जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र से छुड़ाया, उनके अंत के दिनों में क्या होगा, उसका एक चित्र उनको दिखाकर उन्हें वहां से निकाला.
When God brought His people through the sea,
जब परमेश्वर ने उन्हें समुद्र के बीच से ले आया.
They didn't wade through water.
उन्हें पानी में तैरने की जरूरत नहीं पड़ी.
They didn't splash in puddles.
उनको पानी के ऊपर चलना नहीं पड़ा.
They crossed on dry ground.
हम पढ़ते हैं, सूखे भूमि से होकर वो नदी समुद्र के बीच से निकल गए.
Total deliverance.
पूर्ण छुटकारा है वो.
No water in the river, in the sea.
और समुद्र में पानी नहीं.
No smoke upon their garments.
और उनके कपड़ों में धुएं की बदबू नहीं.
In fact, on the night when God brought Israel out of Egypt.
वास्तविक रूप से वह रात जिस दिन प्रभु ने उन्हें इस्राएल मिस्र से छुड़ा लिया है.
Some 6 lakhs of men beside the women and children.
और कोई 6 लाख पुरुष, स्त्री और बच्चे अलग से.
You hear that noise now?
अब वो आवाज आप सुन रहे हैं?
Hear that? The scripture says,
वशास्त्र पवित्र शास्त्र कहता है,
that when all those people came out of Egypt,
कि जब वो सारे लोग मिस्र देश से बाहर आए,
not one dog barked.
ऐसा लिखा हुआ है, एक भी कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई नहीं दी.
How great is our God?
हमारा परमेश्वर कितना महान है.
You can't move in India for 2 minutes without a dog barking at you.
इंडिया में आप 2 मिनट के लिए भी चल नहीं सकते कुत्तों के भौंकने की आवाज को सुने बिना.
And yet all these people, 20 lakhs of people,
कम से कम 20 लाख लोग,
and not one dog barked.
लेकिन वहां पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं एक भी कुत्ते ने नहीं भौंका.
Brethren, this is our God.
प्रियो हमारा परमेश्वर ऐसा है.
What a great God.
कितना महान परमेश्वर है.
He's the God who's going to save Jacob out of all his trouble.
और ये वही परमेश्वर है जो याकूब को उसकी सारी पीड़ाओं से छुड़ाकर निकालेगा.
That time of such great tribulation.
और वो क्षण है वो महाक्लेश काल के बाद.
Jeremiah spoke of the men being like women in labor.
यरमिया ने कहा कि यहां पुरुष स्त्री जो प्रसव पीड़ा में होती उनके समान हो गए हैं.
Revelation 12 is about a woman in labor.
और प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय प्रसव पीड़ा के दौर से गुजरने वाली उस स्त्री का दृश्य है.
Brother Sunil, he told us something about Romans chapter 8.
भाई सुनील ने हमें रोमियो के उसके 8वें अध्याय के बारे में कुछ बातें बताई.
And in Romans chapter 8, we are told that the whole creation groaneth and travaileth together. What kind of pain is that?
हम पढ़ते हैं कि सारी सृष्टि संपूर्ण सृष्टि मिलकर प्रसव पीड़ा से जैसी कराह रही है.
You see, the scientists today, they tell us, well, with global warming.
देखिए वैज्ञानिक कहते हैं कि आज जो संपूर्ण विश्व में गर्मी बढ़ गई है.
And the ozone layer disappearing.
और जो ओजोन की जो परत है वो धीरे मिट रही है.
The creation is groaning.
हम पढ़ते हैं कि सारी सृष्टि एक कराहट से गुजर रही है.
It's like an engine that is eventually breaking down and it's going to finish.
ये एक इंजन के समान है जो धीरे घर घर करते हुए रुकने जा रही है.
That's not the groaning of Romans chapter 8.
लेकिन रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में ऐसा करहाने के बारे में नहीं कहा गया है.
The groaning and the travail and the pain in Romans chapter 8 is not death pangs.
रोमियो के 8वें अध्याय के 22वें पद में जो कराहने की आवाज है वो मृत्यु के जो दर्द है वो नहीं.
That groaning is birth pangs.
ये जन्म के दर्द हैं.
Because the creation is groaning and travailing like a woman in labor, waiting for the manifestation of the sons of God.
हम जानते हैं संपूर्ण सृष्टि मिलकर प्रसव पीड़ा के से इसलिए करा रही है ताकि मनुष्य के पुत्रों परमेश्वर के पुत्रों को उत्पन्न कर पाए.
Who's that?
वो कौन है?
It's us, brethren.
वो हम है भाइयों.
We're the sons of God.
हम परमेश्वर के पुत्र हैं.
Now I know in a slightly different context, but the writer to the Hebrews says.
मुझे मालूम है संदर्भ थोड़ा अलग है लेकिन इब्रानियों को लिखने वाला कहता है.
Unto which of the angels has God said at any time, thou art my son?
किशोर दूतों में ऐसा कौन है जिससे कभी परमेश्वर ने कहा हो कि तुम मेरे पुत्र हो?
None.
किसी से नहीं कहा.
He's never said it to Gabriel.
उसने गब्रियल से कभी नहीं कहा.
Or Michael.
उसने मिखाइल से कभी नहीं कहा.
Or Lucifer.
उसने लूसीफर से कभी नहीं कहा.
God has never said to any angel, you are my son.
परमेश्वर ने कभी भी किसी भी स्वर्गदूत से यह नहीं कहा कि तुम मेरे पुत्र हो.
But what has he said to you and me by grace?
लेकिन अनुग्रह के द्वारा आपसे और मुझसे परमेश्वर क्या कहता है?
You are my sons.
तुम मेरे पुत्र हो.
You are the sons of God.
आप परमेश्वर के संतान हैं.
Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us.
देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम दिखाया.
That we should be called the sons of God.
कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए.
And it does not yet appear what we shall be.
और जैसा हम दिखते हैं वैसा नहीं होगा.
But we know that when we shall see him.
लेकिन हम जानते हैं कि जब हम उसको देखेंगे.
We shall be like him.
हम उसके समान हो जाएंगे.
For we shall see him as he is.
क्योंकि हम उसको जैसा वो है वैसा देखेंगे.
And this poor groaning creation which has been made subject to vanity because of our first father.
और ये सारी पृथ्वी जो परमेश्वर के नाश के लिए तैयार किया गया हमारे पूर्व पिता के पाप के कारण.
It is eventually going to be released from its pang.
और इसे इसके इस दर्द से इस पीड़ा से निकाल लिया जाएगा.
Israel is going to bring forth a man.
इस्राएल एक पुरुष को लाएगा.
God is going to bring forth His sons and manifest them in glory.
परमेश्वर अपने पुत्रों को ले आएगा और महिमा में उनको दिखाएगा.
The great tribulation is a period described as the birth pangs of a woman.
और महापीड़ा काल को एक स्त्री की प्रसव पीड़ा के साथ तुलना की गई है.
But out of it all,
लेकिन इन सब में से,
there's going to come joy.
उसमें से आनंद आने वाला है.
And there's going to come blessing.
और आशीष आने वाला है.
It is going to take every last drop of the pain of the great tribulation to bring Israel to its knees.
और महाक्लेश काल के सारे कष्ट इसराइल को उसके घुटने पर ले आएगी.
But eventually,
लेकिन अंत में,
preserved by God for those 3.5 years,
साढ़े तीन बरस परमेश्वर के ईश्वरीय सामर्थ के संरक्षण में उन्हें सुरक्षित रखा जाए.
When it seems things are so bad that not even the very elect should be saved.
जब ऐसा लगने लगा कि सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, खत्म होने आ रहा, कोई बच नहीं सकता.
In that very last moment, they will cry to their God.
उस अंतिम क्षण में वो अपने परमेश्वर की ओर चिल्लाएंगे.
They will say with the psalmist, I look unto the hills.
और भजन संहिता के साथ कहते हैं कि मैं पर्वतों की ओर दृष्टि लगाऊंगा.
From whence cometh my help?
जहां से मेरी मदद आती है.
My help cometh from the Lord.
मेरी सहायता यहोवा से आती है.
And they'll cry to him.
और वो उससे रोएंगे.
And the heavens will open.
और स्वर्ग खुल जाएंगे.
And the man will be brought forth.
और वो मनुष्य दिखाई देने लगेगा.
He will destroy his enemies with the very brightness of his coming.
वो अपने असामर्थ के द्वारा अपने सारे शत्रुओं को पराजित कर डालेगा.
The devil has lost the battle.
शैतान युद्ध हार चुका है.
There will be tremendous war.
अब बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है.
But there is no doubt about the ending.
लेकिन अंत में क्या होने वाला है हम सब जानते हैं.
Jesus shall reign.
यीशु मसीह का राज्य स्थापित हो जाएगा.
May God bless his word.
परमेश्वर इन वचनों को हमें आशीष करके दे.